भारत की अनुष्ठा है कि प्रारंभिक तर्क का जो फल है वो हमको भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई इधर उधर नहीं हो सकता। और ये भी हमको बताया गया कि भगवान की शरणागत होकर उसकी शरण में आ जाए, कोई आफत हो तो भगवान के निर्बल के बलराम होते हैं, तो भगवान उसको मुसीबत से निकाल लेते हैं। तो ये दोनों को कैसे मिलाया जाए?
देखिए, मैंने ये समझा है कि प्रारब्ध माने प्राकृतिक न्याय अर्थात साधन सामग्री, और पुरुषार्थ माने उसका सदुपयोग। ये दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज के दो पहलू हैं। जैसे जो बल आपको मिला है, जो योग्यता आपको मिली है, जो वस्तु आपको मिली है, जैसे साथी आपको मिले हैं, वे क्या हैं? वे साधन सामग्री के रूप में हैं, वो जीवन के रूप में नहीं है। ये भ्रम तब होता है मानव को जब प्रारब्ध से मिले हुए फल को ही जीवन मान लेता है। वो जीवन नहीं है, वो तो सामग्री है, उसका सदुपयोग करो तो जीवन मिलेगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रारब्ध चाहे जैसा क्यों न हो, दुखमय हो या सुखमय हो, अगर हम उस दुखमय सुखमय परिस्थिति का ठीक उपयोग कर लेंगे तो हमें जीवन मिल जाएगा। मैंने तो इस दृष्टि से समझाया प्रारब्ध को और पुरुषार्थ को, क्योंकि किसी भी कर्म का फल अविनाशी नहीं होता, और किसी भी वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम स्वाधीन नहीं होते। ये दोनों बातें बड़ी गंभीर विचारनी है। कर्म का फल अविनाशी नहीं होता और वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम स्वाधीन नहीं होते, और स्वाधीन हुए बिना न तो प्रभु की प्राप्ति होती है न जीवन की प्राप्ति होती है, होती नहीं। तो स्वाधीन होना हम सबके लिए अनिवार्य है। अब स्वाधीन किसी परिस्थिति के द्वारा होते नहीं, हो सकते नहीं, तो इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारी परिस्थिति प्रारंभवश चाहे जैसी हो तो उसके द्वारा तो हमें स्वाधीनता मिलेगी नहीं। उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का अगर आप प्रभु विश्वासी हैं तो प्रभु के नाते, और भौतिकवादी हैं तो जगत के नाते, और अध्यात्मवादी हैं तो आत्मा के नाते, उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो उसका सदुपयोग कहूं चाहे सेवा कहूं, क्रियात्मक सेवा वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा होती है, और भावात्मक सेवा बुराई रहित होने से होती है। तो बुराई रहित होकर हम बहुत बड़ी व्यापक सेवा कर सकते हैं, मूक सेवा कर सकते हैं, बिना कुछ करे भी सेवा होती है, और मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा हम क्रियात्मक सेवा कर सकते हैं। तो हमें जो कुछ मिला है वो सेवा सामग्री है। अब उस सेवा सामग्री को हम भोग सामग्री बना लेते हैं और फिर रोग में और शोक में बन जाते हैं, और कोई भी प्रसाद भोग की रुचि रखते हुए या भोग का को भोगते हुए हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता नहीं। तब आदमी घबरा कर कहता है कि भाई प्रारब्ध में तो प्रारब्ध ठीक है कि प्रसाद ठीक है, अगर कोई कहे दाया पैर ठीक है कि बाया पैर ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि दोनों पैर ठीक है, तो दोनों पैरों से चला जाता है। प्रारब्ध ने परिस्थिति प्रदान कर दी, पुरुषार्थ ने परिस्थिति का सदुपयोग कर दिया, और आपको अपने में अपना परमात्मा मिल गया, आप स्वाधीन हो गए, आपके दुखों की निवृत्ति हो गई, आपको चिर शांति और जीवन मुक्ति मिल गई। इस दृष्टि से आप सोचेंगे तो प्रारब्ध पुरुषार्थ में कोई झगड़ा नहीं है। और अगर आप सुख दुख के भोग को ही जीवन मानेंगे, जो कि वास्तव में है नहीं, तो फिर झगड़ा ही है, कोई मिटा ही नहीं सका, मिट सकता ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। सुख की भोगी का दुख कभी मिटेगा ही नहीं, आज तक मिटा नहीं, मिट सकता नहीं। इसलिए परिस्थिति को जीवन मानकर तो हमारा आपका विकास नहीं हो सकता, और परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर हम सबका विकास हो सकता है। इस तरीके से आप पदार्थ के सदुपयोग में पुरुषार्थ का काम उपयोग करें, और फिर सबसे बड़े पुरुषार्थ की खोज करें। तो अंतिम पुरुषार्थ क्या है जीवन में, तो मेरे जानते तो बुराई रहित होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, निर्मम होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, अच्छा होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, प्रेमी होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये मुझे पुरुषार्थ मालूम होता है। अगर आप प्रेमी होना पसंद करें, अच्छा होना पसंद करें, बुराई रहित होना पसंद करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाए। बुराई रहित होने से आप संसार के काम आ जाए, इतना बड़ा लाभ होगा। जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं रहती, उसको संसार बहुत पसंद करता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसको अपना पथ प्रदर्शक मान लेता है, उसकी बड़ी पूजा भी करता है, इतना उदार है संसार। लेकिन हम बुराई रहित होते नहीं, और फिर कहते हैं कि साहब न तो परमात्मा की कृपा हमारे काम आती है, न सत्पुरुषों की सद्भावना हमारे काम आती है, न जगत की उदारता ही हमारे काम आती है। इसलिए आप अपने लिए अपने को बुराई रहित करें, बहुत बड़ी बात है, और सबके लिए सुलभ है। बुराई न करने की बात सबके लिए सुलभ है, क्योंकि उसके लिए किसी और की सहायता नहीं देनी पड़ेगी। आप बुराई रहित हो जाएंगे, अपने आप आपका चित्त शुद्ध और शांत हो जाएगा। आप में चित्त के शुद्ध और शांत होने से जिज्ञासा पूर्ति के लिए विचार का उदय होगा, और भगवत प्राप्ति के लिए स्मृति जागृत होगी, और सेवा के लिए आवश्यक सामर्थ्य मिलेगी। ऐसा विधान है, इसलिए प्रारब्ध को बुरा मत समझो, भला मत समझो। प्रारब्ध से कोई भाग्यशील और अभागा नहीं होता, लेकिन जो बुराई रहित हो जाता है वही भाग्यशील होता है। मेरे जानते बुराई रहित होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और फिर अच्छा होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, भगवान को अपना मानना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पुरुषार्थ होता है स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, और शरीर के द्वारा, वस्तु के द्वारा, योग्यता के द्वारा तो बुराई रहित होने पर अपने आप भलाई होने लगती है। उसको सीखा नहीं पड़ता, उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। यहां बुराई रहित हुए तो भलाई होने लगी, अपने आप होने लगती है। कुछ होने वाली भलाई का अभिमान फल छोड़ना होगा, तब आप स्वाधीन होकर अपने को अपने में संतुष्ट पाएंगे। अपने को और किसमें, अपने में। अपने में इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो जो वास्तव में अपना ही है उसमें, और एक अपने में संतुष्ट पाएंगे जो अपने हैं उसी में अपने को संतुष्ट पाएंगे। तो जैसे आपकी निष्ठा हुआ साथ लगा लीजिए वैसे मान लीजिए, लेकिन आपको अपने में संतुष्ट होना ही पड़ेगा, स्वाधीन होना ही पड़ेगा, और तभी आप सही अर्थ में प्रेमी हो सकेंगे। जब तक आप स्वाधीन नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते, और भाई उदार भी नहीं हो सकते। तो उदार बिना हुए संसार के काम के नहीं, और प्रेमी बिना हुए प्रभु के काम के नहीं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, वास्तविकता है। तो प्रभु के काम के होना है तो प्रेमी होना ही पड़ेगा, और संसार के काम का होना है तो उदार होना ही पड़ेगा। लेकिन ये उदारता और प्रेम जो मेरी भाषा में साधना का साधना है, साधना को मैं अविनाशी तत्व मानता हूं। तो एक अविनाशी तत्व है वो साधना, उदारता प्रेम के रूप में, स्वाधीनता के रूप में, ये सब साधना का रूप है। क्योंकि जो अपने को अनुदार कभी पाता है वही उदार होता है, जो अपने को किसी आसक्ति में बना हुआ पाता है वही कभी प्रेमी होता है, और जो पराधीन पाता है वही स्वाधीन होता है। उदार हो जाना, स्वाधीन हो जाना, प्रेमी हो जाना, अथवा उदार स्वाधीन और प्रेमी होने की आवश्यकता अनुभव करना, ये प्रार्थना है। मैं उदार हो जाऊं, मैं स्वाधीन हो जाऊं, मैं प्रेमी हो जाऊं, ऐसी जरूरत महसूस करना बहुत बड़ी, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप इस बात को मान लें कि मैं उदार हो सकता हूं, मैं स्वाधीन हो सकता हूं, मैं प्रेमी हो सकता हूं। ये आपको पहले मान लेना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ये मान लेंगे उदार हो ही नहीं सकता तो उदारता ही मांग कर जाएगी, मैं स्वाधीन नहीं हो सकता स्वाधीन होने मांग कर जाएगी, मैं प्रेमी नहीं हो सकता तो प्रेमी होने मांग कर जगेगी। प्रेमी होने की मांग तो तभी नहीं जगेगी जब आप इस बात को स्वीकार करें कि मैं मानव होने के नाते प्रेमी भी हो सकता हूं, स्वाधीन हो सकता हूं, उदार भी हो सकता हूं। अब वो सीधी बात है, उदार होने के पीछे, स्वाधीन होने के पीछे, प्रेमी होने के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है आपका। अब आप कहेंगे उदार होने के पीछे क्या हमारा दर्शन है? तो अगर हम आपसे प्रश्न कर दें क्या कि तुम शरीर को संसार की सीमा के बाहर ले जा सकते हो, है कोई उपाय किसी के पास क्या आप अपने शरीर को संसार से अलग ले कर दें? बोलो जी, क्या नहीं हो सकता? ये खाली उत्तर देते हैं कि ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं तो शरीर की भांति संसार को के साथ संसार को अपना क्यों नहीं मानते, और संसार की भांति शरीर से अलग क्यों नहीं मानते? दो तो बातें हैं ना। अगर आप शरीर और संसार की एकता को स्वीकार करते हैं तो जैसे शरीर की सेवा का, शरीर के हित का ध्यान रहता है, ऐसे ही संसार के हित का ध्यान क्यों नहीं रहता? और जैसे संसार में के दुख से आप मुक्त रहते हैं, ऐसे ही शरीर के दुख से मुक्त क्यों नहीं होते? होना चाहिए कि नहीं? ये हो सकते हैं कि नहीं? होना भी चाहिए और हो भी सकते हैं। अरे भाई, सभी को अगर आप ये मान लें सभी अपने हैं, कैसे जैसे शरीर, शरीर की भांति सभी अपने हैं, तो फिर आपको बुराई करने का साहस कैसे होगा, रुचि कैसे होगी? अथवा ये मान लें कि जैसे संसार मुझसे अलग है, जितना दूर है ये शरीर भी मुझसे उतना ही दूर है, जैसे संसार पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, ऐसे शरीर पर भी मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अगर ये मान लें आप, तो वैसे तो शरीर और संसार आपसे दूर है ही है, आपसे चिपका हुआ नहीं है, आप उसमें बैठे हुए नहीं है, ये केवल भ्रम है कि जो आप ये सोचते होंगे कि मैं शरीर के भीतर कहीं बैठा हूं या मैं संसार में हूं, ये बड़ा बड़ा भ्रम है। सच ईमानदारी की बात तो यह है कि शरीर और संसार का आपसे कभी मिलन हुआ ही नहीं, कभी मिलन नहीं हुआ, और कभी नहीं हुआ तो कभी हो सकता भी नहीं। फिर भी आप ये मान लेते हैं कि मानो मैं शरीर में कहीं बैठा हूं, मानो शरीर ही मैं हूं, अथवा शरीर मेरा है, फिर भी ऐसा मान लेते हैं। ये भूल है, ये भूल उठाइए। आप अपने ज्ञान के प्रकाश में स्वयं मन देखिए, क्या सचमुच आपका शरीर से कभी मिलन हुआ है? अब देखिए, अथवा जब तक किसी आप कार्य को नहीं करना चाहते हैं तब शरीर, तब तक शरीर का आपने कोई उपयोग कर पाया है? क्या है, किसी कार्य में ही शरीर का उपयोग होता है, और कार्य तुम्हारा है नहीं, कार्य है जगत का। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए बहुत बात बात चल सकता है, तर्क चल सकता है, बहुत गंभीर विचार चल सकता है कि हमारा और शरीर का कभी मिलन नहीं हुआ। यानी जैसे शरीर बालू के समीप बैठा है, बालू के ऊपर जैसे ऐसे बालू के समीप का अनुभव कर रहा है, ऐसे हम कभी शरीर की समीपता का अनुभव कर नहीं सके। बहुत दूर अलग। अब मालूम नहीं तो पागल बात कर रहा है, भला शरीर से हम कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसा लगता होगा आपको। लेकिन वास्तव में ये तो पागलपन नहीं है, पर हम शरीर में बैठे हैं ये महापागलपन है। शरीर नहीं रहेगा तो मेरी क्षति हो जाएगी, बड़ा भारी पागलपन है। कैसे आएगी समझ में? कहां से आती समझ? तो शरीर ऐसा है, कभी नहीं आती। ये तो आप समझने की बात कहते हैं, यही गलती करते हैं भाई। ज्ञान पूर्वक देखो तो मालूम होगा कि आपका शरीर का मिलन ही नहीं है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। और जैसे हमारा आपका शरीर का मिलन हुआ नहीं, ऐसे ही सच पूछिए तो मैं ऐसे कभी अलग हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। दोनों ही बातें विचित्र है। हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, हो सकते नहीं, और शरीर से हमारा मिलन हुआ नहीं, हो सकता नहीं। लेकिन दोनों ही बातें हम उल्टे रूप से स्वीकार करते हैं। कहते परमात्मा है तो न जाने कब मिलेगा। अरे भले आदमी, जब तुम कहते हो सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, तो कब मिलेगा? अब मिलेगा कि अब मिला है? कितनी आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है क्या? ये सोचना कि न जाने परमात्मा कब मिलेगा, जबकि परमात्मा से आप कभी अलग हो सकते नहीं, हुए नहीं, है नहीं। हाँ, परमात्मा में रहते हुए, परमात्मा से अभेद रहते हुए भी हमने आपने जो ममता के आधार पर, कामना और तादात्म्य के आधार पर शरीर के साथ जो संबंध स्वीकार कर लिया है, ये हमारी भूल है, ये हमारा प्रमाद है। अगर हम शरीर की ममता, कामना और तादात्म्य तोड़ दें, अचा होकर, निर्मम होकर, और एक और तरीका, बहुत सूक्ष्म, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, और एक बार कह दू बहुत गंभीर, अप्रयत्न होकर, अप्रयत्न होकर, पहले निर्मम होकर, फिर अचा होकर, फिर अप्रयत्न होकर, इन तीनों में एक भी उपाय छोड़ा नहीं जाएगा। लोग आज ममता रखते हुए, चाह रखते हुए कहते हैं महाराज मोक्ष हासिल नहीं होता, यानी अप्रयत्न नहीं होते। अरे भला भाई, ममता रखते हुए, चाह रखते हुए अप्रयत्न हो सकते हो? खराब नहीं हो सकते, लेकिन निर्मम होकर, अचा होकर अभी हो सकते हो? जब चाहो तब हो सकते हो? तो मैं ये निवेदन कर रहा था मानवों से कि शरीर के द्वारा आप परमात्मा को, और अगर ये कह दूं कि मिल नहीं सकते तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, अतिरिक्ति की बात नहीं है, आप तो मिल सकते हैं, लेकिन शरीर के द्वारा नहीं मिल सकते, अपने द्वारा मिल सकते हैं। हाँ, शरीर के द्वारा परमात्मा की सृष्टि का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कार्य करते हैं, जो कि आपका कोई कार्य है नहीं। और जो कार्य है आपका नहीं, आपका जो पर्सनल कार्य है वो है सत्संग, उसे आप करते नहीं। आप शरीर के द्वारा करने वाले कार्यों को अपना मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी असावधानी है। अरे भाई, शरीर के द्वारा जो आप भगवान का नाम लेते हैं, एक बार लगा दिया था वो ध्यान करते हैं, कहते हैं ध्यान करता हूं और मुझे वो भगवान का दर्शन होता है, पर अब इसके आगे मैं क्या करूं? आप सोचिए, ध्यान भी हो गया, भगवान दर्शन, उसके आगे क्या करूं? तो भाई, कोई आपको अपना संबंधी मिल जाए तो आप उससे पूछ लेंगे क्या करूं? आप तुरंत कहेंगे भाई हमारा संबंधी आया है, एकदम आपका हृदय कि प्रेम से भरेगा, क्या ये आपका अनुभव सत्य नहीं है? जब आपको कोई अपना मिलता है तो वो प्यारा नहीं लग पाया क्या? अच्छा, फिर उसकी सेवा में आप वस्तु योग्यता सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते हैं क्या? अवश्य करते हैं। तुम्हें ये निवेदन करना था कि मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा अगर आप परमात्मा का काम करना चाहते हैं, परमात्मा काम माने संसार का काम, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और फिर कार्य के अंत में परमात्मा भी नित्य वास रह सकता है आपका। परमात्मा का काम करने वाला परमात्मा ही में रह सकता है, रहता ही है। वैसे तो सारी सृष्टि परमात्मा में रहती है, लेकिन वो महसूस करती नहीं कि परमात्मा में रहते हैं। क्यों? उन्होंने एक अपना काम बना लिया है, अपना काम उत्पन्न कर लिया है। काम माने करने में जो सुख है वो मुझे चाहिए, कुछ करने से जो सुख मिलता है वो मुझको चाहिए, करने से जो मिलता है जो काम करते हैं। भा भाई काम है तो अभी काम करेंगे, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। करने के द्वारा जो अपने लाभ की बात सोचते हैं इसको काम कहते हैं, अपना काम कहते हैं। और भाई करने के द्वारा जो भगवान का काम करते हैं उसको पूजा कहते हैं, और जो संसार काम करते हैं उसको कर्तव्य कहते हैं या सेवा कहते हैं। संसार का काम सेवा और भगवान का काम पूजन और अपना काम बंधन। बहुत पक्का बंधन है अपना काम करना। पता लगाओ भाई आपको कुछ काम भी है क्या? आप कहेंगे रोटी खाना है, दवाई खाना है, कपड़ा पहनना है, हमारे तो काम है। ईमानदारी से बताओ कि शरीर से भिन्न अनुभव करके आपने किसी काल में भी रोटी खाई है क्या? खा पाओगे क्या? भूख लगी है क्या? बोलो, अब कैसे बोले? शरीर से अलग अनुभव किया ही नहीं, ये बोले कैसे? लेकिन अकल के तौर पर तो कह दो मुझे, हाँ हाँ ठीक है, ना करने की हिम्मत है नहीं। तो वो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपने अपने लिए क्या करने का निर्णय किया है, क्या सोचा है आप अपने लिए क्या करेंगे, उसके बाद फिर पूछिए कि आप संसार के लिए क्या करेंगे, फिर सोचिए परमात्मा के लिए क्या करेंगे। पहले सोच बताइए तो सही, जरा सोचिए तो सही कि आप अपने लिए क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं अपने लिए, क्या करना चाहते हैं अपने लिए, क्या कर सकते हैं अपने लिए। इन बातों सोचिए तो आप अपने द्वारा अपने लिए अच्छा हो सकते हैं, निर्गुण हो सकते हैं, दूर विश्वासी हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। लेकिन आप अपने द्वारा अपने लिए इन बातों को छोड़कर बताइए क्या कर सकते हैं जरा। कोई बताए भाई, कोई बताए बहन, सोचे कि अचा होने के अतिरिक्त, निर्मम होने के अतिरिक्त, पूर्व विश्वासी होने के अतिरिक्त आप अपने द्वारा अपने साथ क्या कर सकते हैं? जाकर देखिए, पूर्व विश्वासी आप हो सकते हैं, अच्छा आप हो सकते हैं, निर्मम आप हो सकते हैं, अपने द्वारा हो सकते हैं, अपने लिए हो सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए, और अपने ही द्वारा और अभी हो सकते हैं। और उसका महान फल जो निर्विकारता, चिर शांति और स्वाधीनता है और प्रेम का उदय है वो आपको मिल सकता है। अपने द्वारा आप चार बातें जरूर कर सकते हैं। परमात्मा को अपना मान सकते हैं, कोई बता नहीं जा सकता, अचार हो सकते हैं, निर्मम हो सकते हैं, प्रभु में विश्वास कर सकते हैं, अपने द्वारा विश्वास कर सकते हैं।
स्वामी जी अपने को जाने तो कर सकें,
अपने को जानने का प्रश्न तो करने की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन आप अपने को महसूस करते हैं कि नहीं? भले ही जानते हो मैं क्या हूं, पर ये भी जानते हैं मैं हूं, और ये भी जानते हैं ये मैं नहीं हूं।
शरीर से अलग होने का अनुभव
जो सुन बात सुनू, अगर आप ये अपने आप अपने द्वारा अच्छी तरह जानते हैं कि जिसको मैं यह करके अनुभव कर रहा हूं वो मैं करके उसे स्वीकार कर ही नहीं सकता, जिसको आप यह करके अनुभव कर रहे हैं उसको मैं करके स्वीकार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। आपसे बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, कभी ठंडी तबीयत से बैठकर सोचिएगा, मेरे साथ कोई बुराई न करे इसमें अंतकरण ने क्या बताया। आप जानते हैं बुराई के जीवन में कोई स्थान नहीं है, लेकिन जब दूसरे के साथ बुराई करते हैं तब इस बात को उपयोग नहीं लाते कि भाई भले ही कोई मेरे साथ बुराई कर रहा है पर मुझे अधिकार है क्या बुराई करने का, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे। मुझे अधिकार है मिले हुए पर अपना अधिकार मान, मिले हुए पर क्या प्रतीत होने पर, प्रतीत होने वाले पर अपना अधिकार मानने का, जबकि मानता हूं कि मेरा कोई अधिकार है, जानता हूं कि कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मिले हुए मिला हुआ भी उल्टी बात है, गलत भाषा है भैया ये भी। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो शरीर आप देख रहे हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। और नहीं आप सोचिए वो बड़े बड़े वैज्ञानिक मौजूद हैं, चिकित्सक मौजूद हैं, भाई जी के शरीर की कण कथा सुनिए तो आपको पता चलेगा कि दिन रात डॉक्टर खड़े हुए हैं और शायद कम लोगों को इतनी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन क्या कर सके बेचारे, कुछ नहीं कर सके, कोई अधिकार नहीं रहा। अरे भाई जी ने मैंने किया कोई दवा मत दो भाई, लोगों ने नहीं कहा करने दीजिए, तुमने कहा दवा देनी चाहते हो तो ऐसी दवा दो, दिन में बेहोश हो जाऊं, इतनी असह्य वेदना है। तो भैया मेरे अच्छी तरह जानते हो आप इस बात को कि शरीर पर मेरा अधिकार, अब आप देखिए क्या अर्थ कहां लगाते हैं, भूख लगी श्रीमती ने बढ़िया खाना पकाया आदर को बैठा ला और पढ़ने लगे, आप खाने लगे बात देखो वाह, हम शरीर द्वारा भोजन करते हैं, हम शरीर के द्वारा भोजन करते हैं। अब ऐसे रवैया आपने अख्तियार कर लिया, कर बुरा हम शरीर द्वारा भोजन करते हैं। अरे और अगर और जरा मैं करीब आप कह दूं, बुरा न माने कोई भाई महानुभाव, आप कहते हैं दूसरा सेवा करते हैं, बुराई रहे तो वही नहीं हो सेवा हो गई, स्मृति जगी नहीं हो भजन हो गया, कैसे आप भजन करते हैं बाबू, कैसी आप सेवा करते हैं। हाँ सेवा की चर्चा करते हैं शरीर के द्वारा, भजन की चर्चा करते हैं शरीर के द्वारा, अभ्यास करते हैं शरीर के द्वारा, विश्वास ही तो नहीं हो पाता शरीर के द्वारा, और इंद्रियों के आधार पर बुद्धि के आधार पर जो आप विश्वास करते हैं उसमें विकल्प हो जाता है, वो निर्विकल्प होता ही नहीं कभी, बहुत गंभीरता से विचार करें। इसलिए भैया आप प्रभु विश्वास आप अपने द्वारा कर सकते हैं, बुराई रहे तो आप अपने द्वारा हो सकते हैं, शरीर पर संसार पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इस सत्य को आप अपने द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। एक का नाम त्याग है, एक का नाम सेवा है, जो का फल प्रेम है, सेवा त्याग प्रेम यही मानवता है, इसी में जीवन है, इसी में पूर्णता है। अरे भैया त्याग का अर्थ यही है कि आप इस बात को ठीक अनुभव करें ज्ञान पूर्वक कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है।
महाराज एक सुना थी फिर वो एक सेवा त्याग प्रेम के लिए फिर करण की आवश्यकता नहीं है,
बिल्कुल नहीं है, सेवा क्रिया नहीं है, आपने पैर दबा दिया सेवा नहीं है। हाँ तो आप तो मानते ही, तो हम क्या करें, हम मेहनत थोड़ी करते हैं। देखिए मैं आपसे निवेदन करूँ, मैं कोई विवाद नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो मानते हैं मत मानिएगा, आप जरूर मानिए कि शरीर द्वारा हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारा कोई नुकसान तो है नहीं, कि हमारे जानते सेवा का जो तत्व है वो तो बुराई रहित होना है, त्याग का जो तत्व है वो तो अचार होना है, निर्मम होना है, तादात्म रहित होना है, और आस्था का जो तत्व है वो तो भगवान के से भिन्न किसी और के अस्तित्व को अस्वीकार करना है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना है, उसी से भगवत प्रेम का उदय होगा। हाँ उस प्रेम का उदय हो जाए तो उसका प्रभाव अंतकरण पर हो सकता है, उधर शरीर पर भी होता है, अंतकरण पर भी होता है। अरे जहां प्रेमी बैठता है भूमि पर होता है, वो तो बहुत दूरी बात, सारा जीवन प्रेम तत्व से निर्मित हो सकता है, इसमें मुझे संदेह नहीं है, किंतु मूल जो सत्य है कि भाई हम जो जानते हैं उसे स्वीकार क्यों नहीं करते, जो मानते हैं उसे दृढ़ता क्यों नहीं रखते। आप जानते हैं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे, मुझे कोई बुरा न समझे। हमारे पास रात ही पत्र आया सुना हमने, जिसने किसी को बुरा समझा किसी को बात हो गई। अब बुरा है कि नहीं है, है तब भी हमको बुरा समझने का अधिकार नहीं है, नहीं है तब भी नहीं है। यही कारण है कि आज परस्पर में सही एकता नहीं दिखती। परस्पर में जो एकता है वास्तव में उसका बोध नहीं होता जीवन में। एक ही परिवार में अरे दोरानी जिठानी दोनों ही ईश्वर के मानने वाली है, दोनों ही भिन्नता। वो चचा भतीजे दोनों साधु के मानने वाले, दोनों में भिन्नता। ऐसी अनेक घटना हम आपको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, देख आवाज है ना। पहले तो हमारे जिन्ना साहब कहते थे, अब जरा स्थूल कर दूंगा आपको समझने के लिए, सूक्ष्म तो मैं खत्म कर दिया, कि साहब हमारा और हिंदुओं का तमद्दुन नहीं मिलता, इसलिए हम एक जगह नहीं रह सकते। अब तमद्दुन और उर्दू शब्द है सीख लो, हमारा उनका तमद्दुन कहते हैं कि वो उनका अलग मजहब है, हमारा अलग मजहब, एकता नहीं है, कैसे रह सकते हैं हम एक देश में नहीं रह सकते, हम एक साथ नहीं रह सकते। अरे भले आदमी तुम तो मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। बंगाल पर क्या हो रहा है, पूरी बंगाल पर मुसलमान ऊपर निर्दोष बम डाल रहा है, जला रहा है, निहत्तों को मार रहा है, लाखों की संख्या में हमने सुना है कि हत्या हो चुकी है। क्यों भाई, मुसलमान क्यों मर रहा है? कि सब झूठी बात है ना। क्यों वो झूठी बात है? कि सही अर्थ में जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, मैं जानता हूं कि मेरे साथ कोई बुराई न करे, इसमें मैं स्वाधीन नहीं हूं कि कोई मेरे साथ बुराई न करे, पर इसमें मैं पराधीन भी नहीं हूं, मैं किसी साथ बुराई न करूं। तो बुराई रहित होना सेवा का मूल तत्व है, मूल तत्व।
तो जो संसार को अपना अधिकार मानता है उसको जरूर भय होगा, अगर सेवा के लिए नहीं मिल सकता, अगर अपना संसार को अधिकार हटाए ले तो अगर भय हमेशा उसी को होता है जिसके पास कुछ है, क्या रहा है बोलो, या उसको नहीं होता जिसके पास सब कुछ है, तो सब कुछ तो परमात्मा का नाम है, उसी में सब कुछ है। तो जिसके पास परमात्मा है उसको भय नहीं होता, अथवा जिसके पास संसार में कुछ है वह भय नहीं होता, भय भी नहीं होता। तो भय लिखने का ही उपाय है ज्ञान पूर्वक अनुभव पूरा मेरा कुछ नहीं है, और दृढ़ता पूर्व निर्णय करो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आस्था सुविधा विश्वास पूर्व स्वीकार करो प्रभु अपने हैं, सब कुछ होगा है, बस है मिल जाए। हाँ भाई, और किसी को कोई बात उसके
स्वामी जी, मेरे को सुखना नहीं होना दो तीन साल हो गए, सुखना नहीं होना, क्या वजह?
क्या नहीं होता
सुखना नहीं होता,
दो तीन साल से मुझे सपना नहीं आता है,
ये सब क्या कह रहे हो? ये जो देख रहे हैं सब सपने ही है भैया। जागृति तो उसी चीज का ही नाम है।
तो जी होगा देखो, उसमें अपना तो ना होगा, मतलब समझ रहा होगा, कोई भी चीज है और उसके पास में देखो उसमें अपना तो ना होगा, समझ रहा होगा, मतलब
नहीं नहीं देखिए अर्थ मत बदलो, सीधी कोई बात नहीं हो, जो भी अनुभव करता है संसार में मेरा कुछ है वो कभी अर्थ नहीं होगा, उसको तो भय लगा रहेगा। अथवा जिसने ये स्वीकार कर लिया प्रभु मुझ में है, मेरा है, अभी है, उसे खाल भय होगा न, उसको होगा, और जिसके पास कुछ नहीं उसको भय नहीं होगा। तो जिसके पास कुछ नहीं उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए उसे खाल भय होगा, ऐसा। हाँ भाई, और किसी को कोई बात होती हो?
महाराज जी, परमार्थ के विषय को समझते हुए जानते हुए भी वो न तो वो आनंद आता है और न वो मस्ती आती जो कि होना चाहिए, ये अभाव दिमाग के अंदर कुछ समझता है, हृदय के अंदर वो मस्ती और आनंद नहीं आता।
ये पुरानी परंपरा का ये प्रश्न है, मेरे स्कूल में हमारा बैठे हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूज्यमान राज ये बात बहुत कहते थे, बात कहते
हम तो हमारी स्थिति कह रहे हैं।
हाँ, इसलिए तुम्हारी कथन की है, लेकिन ये स्थिति जो है ना, आपने एक तरफ ये मान लिया कि मैं समझता हूँ जानता हूँ, तीन थोड़ा आए जो समझ में आया ही नहीं उसे आप समझते कहते हैं, और जो समझ में आता है उसे आप समझते ही नहीं। आप विचार कर देखो, समझ में आता है संसार, उसको आपने जानने की कोशिश नहीं की, जानने में आता है संसार, उसको आपने जानने की कोशिश नहीं की, उसके आपने बीच के संबंध पर विचार नहीं किया। अब मान बैठेंगे कि मैं जान रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, कि मैं आत्मा हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, मैंने बहुत सा पढ़ लिया लिख लिया, मैं समझ लिया सारी प्रक्रिया रख लिया मैंने, तो वो तो सरकार समझने की चीज भी नहीं थी, समझना है भी नहीं। और नहीं तो महाराज कितनी बड़ी भूख लगी हो और देखने में कितने सुंदर रसगुल्ले हो, बढ़िया मारवाड़ हो गए पटना के, और आपको ये मालूम हो जाए कि इसमें विष लग गया है तो आप कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं विष खाया हमारा। तो जानने का, बल्कि देखिए मैं आपको क्या बताऊं, आधुनिक दार्शनिकों ने भी और प्राचीन दार्शनिकों ने भी इस तथ्य को एक मत से स्वीकार किया है कि जब अविद्या नहीं रहती विद्या नहीं रहता, ये प्राचीन दार्शनिकों की भाषा है, और आज आधुनिक दार्शनिकों की भाषा है कि मनुष्य तभी तक बुराई करता है जब तक सचमुच वो अपने द्वारा बुराई को बुराई करते नहीं है। ये तो है दार्शनिकों का मत। तो आपका प्रश्न बिल्कुल इसका उल्टा है कि मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, पर जीवन में नहीं आती बात। तो ये तो एक स्कूल का सखिया कलाम है जिस स्कूल में हम बैठे हैं, ये वास्तव में ये प्रश्न ही गलत है, ना आप जानते ही है ना आप समझते ही है, बुरा मत मानिएगा। और जिसको आप जानना समझना कहते हैं वो तो सीखना है, आपने सीखा है, सुना है, जाना है समझाए, तो सीखे हुए में और जीवन में तो फर्क हो सकता है, पर जाने हुए में और जीवन में फर्क नहीं होता ऐसा। फिर भी आप इसको मानते हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो इस प्रश्न का उत्तर इस पाठशाला में सैकड़ों साधकों को दिया वर्षों से, समझ महाराज क्या बताए, बात समझ में आती है, जीवन में नहीं है, समझ को उल्टा बात कह दिया, तो अपनी जान बचाना है, बढ़िया दूध पीना है, भलाई करना है, कर ही देंगे। लेकिन आप पूछते हैं तब मैं तेरा मरने के करीब हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं जानते हैं नहीं समझते, कहते हैं जानते हैं, क्योंकि जानने का अर्थ ये नहीं है। देखिए यहां आप ये जानते हैं बुराई जानना अच्छा नहीं है, वहां ये आप ये भी जानते हैं कि बुराई जल्द सुख पसंद है, क्या जानते हैं, यहां आप जानते हैं कि बीमारी नहीं करना चाहिए, वहां आप ये भी जानते हैं अगर धन आ जाता है तो आराम मिलेगा, कहां जानते हैं, इसको जानना थोड़ी कहते हैं। जानने का बात यह है कि जब आप ये ठीक ठीक जान ले कि सचमुच इतने बड़े संसार में मेरा है ही नहीं, सचमुच जान ले तो आपका निर्णय आ जाए फौरन आ जाए, और मुझे संसार जो कुछ नहीं चाहिए तो शांति आ जाएगी, और प्रभु अपने प्रियता आ जाएगी, फोन उठने वाला है।
बुद्धि के क्षेत्र में ये सब
मैं आपसे विरोध करता हूँ, बुद्धि के क्षेत्र की बातें नहीं है, मैं कह रहा बुद्धि के क्षेत्र की बातें नहीं, आप बुद्धि से लगा देते हैं, बुद्धि के क्षेत्र में आप समझा है सीख रहा है, ये तो मेरा कुछ नहीं है, ये बुद्धि नहीं जानती, ये बुद्धि पूर्वक नहीं जानते, ये ज्ञान पूर्वक जानते हैं, मेरा कुछ नहीं है, जैसे हॉल में बैठा हूं आप भी बैठे हैं, इसे आप जानते हैं मेरा नहीं है, तो इसका चिंतन आपको कभी नहीं होता, समझा के जानते मेरा नहीं है, ये बुद्धिपूर्वक जो लगा दिया हिसाब किताब ये गड़बड़ कर दिया। बुद्धि तो इंद्रिय विषय पर अपनी राय देती है, वो भी माने आपकी मर्जी न माने आपकी मर्जी, बुद्धि आपको मनवा नहीं करती, बुद्धि बता देगी कि ये शरीर जैसा तुम्हारा अभी है लाला आगे नहीं रहेगा, ऐसा पहले नहीं था, ये बुद्धि दृष्टि आपको दिखा देगी, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में दिखाएगी, बुद्धि स्वयं नहीं दिखा सकती, उस ज्ञान के प्रकाश का आप आदर नहीं करते, बुद्धि दृष्टि का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है जीवन उठा कर जाएगा भैया, बुद्धि तो दृष्टि है ना, बुद्धि को स्वतः ज्ञान थोड़ी है, ऐसे इंद्रिय की दृष्टि है, इंद्रिय को स्वतः ज्ञान थोड़ी है, और आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, आपको बुद्धि दृष्टि भी प्राप्त है, आपको इंद्रिय दृष्टि भी प्राप्त है। बुद्धि दृष्टि का प्रभाव जब होगा तब इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव नहीं रहेगा, उपयोग रहेगा प्रभाव नहीं रहेगा। तो बुद्धि दृष्टि का प्रभाव क्यों नहीं होता है? इससे नहीं होता कि आप इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव को पसंद करते हैं। अब वो लाचन डालेंगे मन के ऊपर। आचार्य जी, आचार्य शक्ति इस प्रकार की मन विचारेगा तो अपराध है नहीं। जिंदगी भर लड़की सुनती रहती है ये मेरे मैया है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भैया है। जिंदगी भर ठीक जानती है ये मेरी सहोदरा है, भैया जानता है मेरी सहोदरा बहन है, बहन जानती है मेरा सहोदरा भाई है। लेकिन जब पति को पसंद करती है तो छोड़ देती है मेरा घर नहीं। क्यों भाई? जिंदगी भर तो बात तो ठीक थी मेरा बताई, क्यों पर नहीं भाई अब मेरा संबंध पति से हो गया है, अब पति के घर में मेरा घर है। ऐसे ही जिनका संबंध परमात्मा से हो जाता है वो तो ये बात जानते हुए भी कि भाई इसी संसार में उत्पन्न हुए, इसी में स्थित हैं, इसी से रहे हैं, जब वो परमात्मा से संबंध स्वीकार कर लेते हैं तब वो कहते हैं तो मेरा नहीं है। परमात्मा का संबंध संसार के संबंध को नाश कर देता है। ये है विधान। परमात्मा संसार को नाश नहीं करता, परमात्मा का संबंध, और परमात्मा का संबंध आप स्वीकार करते हो, परमात्मा नहीं कराता आपको, तो आप परमात्मा का संबंध स्वीकार करते ही नहीं, आप संसार का संबंध स्वीकार करते हो और परमात्मा को की चर्चा करते हो। तो चर्चा में आने वाला परमात्मा बिना संबंध के कैसे प्यार लगेगा? ये कहने लग जाती है। अभी तो जब आप चाहो तब आपके दिन मस्ती आ सकती है, आप निर्दन हो सकते हैं, आपको जन्मजात अधिकार है शांति का, जीवन मुक्ति का, परम प्रेम का, यह आपका अधिकार को छीन नहीं सकता। पर आप ही अपने अधिकार को छोड़ दी कमजा करें, और जिस पर अधिकार नहीं उसको अधिकार मान लो। आज तक कोई भी ये नहीं सिद्ध कर सकता कि संसार पर मेरा स्वतंत्र अधिकार है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं। तो हमसे अधिकार छोड़ा जाता नहीं, और जो वास्तव में हमारा अधिकार है उसको हम पसंद करते ही नहीं। हमारा अधिकार है कि हम परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लें, स्वाधीन है महत्व को स्वीकार कर लें, संबंध को स्वीकार कर लें। इसमें न शरीर की सहायता की जरूरत, न इंद्रियों की सहायता की जरूरत, न मन बुद्धि की सहायता की। अरे भाई आप विचार करके देखो, बुद्धि तो भौतिक तत्व है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक तत्व के द्वारा अगर परमात्मा मिल जाता तो हाथ पैर से भी परमात्मा पकड़ लिया जाता, और जो हाथ पैर से पकड़ लिया जाता तो यंत्र से भी परमात्मा पकड़ लिया जाता, तो यंत्र भी प्राकृतिक तत्व है। तो मन बुद्धि से कोई परमात्मा पकड़ा जाता है? परमात्मा पकड़ा जाता है अपने द्वारा, जहां बुद्धि की पहुंच ही नहीं है, मैं तक बुद्धि नहीं पहुंचती, यह तक बुद्धि रहती है। मैं का और परमात्मा का संबंध है, मैं का और है का संबंध है, यह का परमात्मा का संबंध इस रूप में नहीं है कि आप यह के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, इस रूप में नहीं है। हाँ, यह के द्वारा आप संसार की सेवा कर सकते हैं। देखो सर्वप्रिय महान भावों ने यह जंगल में मंगल कर दिया, जैसे लोग कलकत्ते मामले में रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, ये तो आलोक निर्वाह कर सकते हैं। पर आप संसार की सहायता के द्वारा परमात्मा को अपना मान सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस दृष्टि से महानुभाव विचार करें तो शायद आपको लाभ जरूर है। हार हिम्मत मत हारिए, निराश मत हो जाइए, अपने करने वाली बात सही से मत कीजिए।
अगर हमने गलती सीखा है तो
नहीं सोचा सही है नहीं, आप फिर मेरी बात को तो सुने ही नहीं, सोचने कौन कहे। मैं कहता हूं तो सोचने से समझने से परमात्मा का कोई संबंध ही नहीं है, तुमसे परमात्मा का संबंध है। तुम
तुम जिस बुद्धि के द्वारा संसार में कामयाब हुए, सफल हुए, जिस बल पुरुषार्थ के द्वारा संसार उसी बुद्धि के द्वारा समाधान करना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? अरे बाबा, बुद्धि का सहारा छोड़ो, शरीर का सहारा छोड़ो, धन का सहारा छोड़ो, परमात्मा से मिलने के लिए। ये नहीं कहता मुझे धन दे दो, धन की निंदा नहीं करता हूं, मैं तन की निंदा नहीं करता हूं, बुद्धि की निंदा नहीं करता हूं, पर जिस तन से, जिस धन से, जिस बुद्धि से आप संसार में भले आदमी कहलाए, उसी तन बुद्धि से आप परमात्मा के प्रेमी हो जाए, संभव नहीं, किसी काल में संभव नहीं है, किसी प्रकार से संभव है, न तो किसी काल में संभव है न किसी प्रकार से। कोई कोई बात इसलिए कहता हूं कि आप लोग तो पुराने सत्संगी है, सब जानते ही पूछते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते ही मैं अपना भी नुकसान पहुंचा और आपको भी नुकसान से मुझे क्या फायदा हूं?
इसके लिए ठीक ठीक प्रक्रिया क्या
है? यही प्रक्रिया है कि आप अपने द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास करें, इतने इस बात पर विश्वास करें कि मुझे परमात्मा से मिलने के लिए न शरीर की जरूरत है, न इंद्रियों की, न मन की, न बुद्धि। और जो परमात्मा शरीर के द्वारा मिलेगा, मन के द्वारा मिलेगा, बुद्धि के द्वारा मिलेगा, वो यंत्र के द्वारा भी मिलेगा। तो शरीर के द्वारा जो आप काम करते हैं वो यंत्र के द्वारा भी होता है सरकार, इसलिए वो अमेरिका वालों को मिलेगा, रूस वालों को मिलेगा, आपको कहीं मिलेंगे। और जो परमात्मा आपको अपने द्वारा मिलेगा वही मनुष्य मात्र को मिलेगा, तो मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जितने भाई बहन बैठे सबको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कहते ही उसको है जो सबको मिले, उसका नाम परमात्मा नहीं है, किसी को मिले किसी को न मिले, वो कुछ और होगा, वो परमात्मा नहीं होगा। तो आप अपने द्वारा परमात्मा को प्रसन्न कीजिए, अपने द्वारा परमात्मा के सत्व को स्वीकार कीजिए, आपको परमात्मा जरूर मिल जाएगा भैया, जरूर मिल जाएगा।